अध्याय तीन जीवन वृत्त। जैसा कि कवि के काल निर्णय के सिलसिले में मैंने निवेदन किया है कि विद्यापति के जीवन वृत्त का पता देने वाली ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है। जो कुछ सामग्री प्राप्त होती है वह उनके जीवन से संबद्ध एकाक घटनाओं के यत्किंचित प्रकाश डालने से सक्षम है। ऐसी अवस्था में कवि के जीवन वृत्त पर विरल विवरण केवल उनके रचनाओं में वर्णित वस्तु तत्व तथा उनके पारिपार्श्व में अभिव्यक्त भावों के भीतर नहीं त्रैक्तिक संकेतों तक ही सीमित हो सकता है। अर्थात हम यत्किंचित प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री के प्रकाश में उनके जीवन के संबंध में कुछ मोटी धारणाएं बनाकर उनकी पुष्टि के लिए रचनाओं से कुछ अंतर साक्ष्य ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार का कार्य सदा ही खतरे से भरा होता है, क्योंकि यह अनिवार्य सही नहीं कि किसी कवि की रचनाओं में अभिव्यक्त भावधारा और उसमें उपस्थित घात प्रतिघात उसके जीवन का प्रतिफलन ही सूचित करे। यह सत्य है कि कवि का जीवन उसकी वैयक्तिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है और वह चाहकर भी अपने वर्ण वस्तु को उन प्रभावशाली प्रभावों से अलग नहीं कर पाता, किंतु वर्ण वस्तु के साथ संलग्न भावों के आधार पर कवि के जीवन वृत्त के निर्माण का कार्य सदा अनुमानिक ही कहा जाएगा। प्रसिद्ध कवियों के जीवन के साथ किंवदंतियों का घटाटोप भी कम नहीं होता। लोकप्रियता सदा ही लोकमानस की रंगीन कल्पनाओं से अभिषिक्त हुआ करती है। जनता के पास अपने प्रिय व्यक्ति के लिए प्रतिदान में समर्पित करने के लिए केवल कल्पना के सुमन होते हैं। इसी कारण जो व्यक्ति जितना ही लोकप्रिय होता है उसके व्यक्तित्व के चारों ओर निजंधरी कथाओं का जाल भी उतना ही सघन होता है। विद्यापति का जीवन वृत्त भी इसी प्रकार की रंगीन कथाओं से आच्छन्न है। निजंधरी कथाओं सर्वथा निर्मूल भी नहीं होती। निजंधरी का अर्थ ही है जनता के भावों से अलंकृत ऐतिहासिक सामग्री, या अलंकरण जितना ही अधिक घना होता है ऐतिहासिक सामग्री का रूप उतना ही धूमिल। इस कारण निजंधरी कथाओं के पेट में से सत्यांश को निकाल पाना बहुत कठिन होता है, किंतु यह संभव नहीं है। विद्यापति का जन्म मिथिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का वह काल मिथिला के लिए विनिपात और दुख का काल था। मिथिला नरेश गणेश्वर की असलान नामक सुल्तान ने 252 लक्ष्मणाब्द में छलपूर्वक हत्या कर दी थी। राजा की मृत्यु के बाद देश में भयंकर अराजकता छा गई। विजेता के अत्याचार से पीड़ित जनता ने केवल दारिद्र का शिकार हुई बल्कि सांस्कृतिक पतन का। विद्यापति ने बड़े थोड़े शोक भरे शब्दों में लिखा है कि मिथिला में कोई गुण अवशिष्ट नहीं रहा, कवि लोग भिखारी बनकर मारे मारे फिरते रहे। कीर्तिलता में उन्होंने तत्कालीन मिथिला की अवस्था का इतना कारुणिक चित्रण उपस्थित किया है वह न केवल हृदय द्रावक बल्कि भयोत्पादक भी है। इस परिस्थिति को देखते हुए यह अनुमान करना निराधार न होगा कि कवि का किशोर दुखपूर्ण परिस्थितियों की छाया में व्यतीत हुआ। विद्यापति का वंश सदैव से विद्या और वैभव का स्वामी रहा है। उनके पूर्वज कर्मादित्य देवादित्य आदि ने केवल प्रसिद्ध विद्वान बल्कि अपने समय के उच्च शासनाधिकारी भी थे। विद्यापति ने अपने संभ्रांत और प्रसिद्ध वंश के किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया है। इस आधार पर डॉक्टर विमान बिहारी मजुमदार ने यह अनुमान किया है कि कवि ने शायद अपेक्षाकृत निम्न परिस्थितियों में रहने के कारण अपने परिवार के व्यक्तियों का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि आत्मसम्मान के विषय में सचेतन अपेक्षाकृत दरिद्र बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने संबंधी बड़े लोगों का परिचय नहीं देना चाहते हैं। क्या इसीलिए विद्यापति ने कभी भी किसी ग्रंथ अथवा पद में देवादित्य वीरेश्वर गणेश्वर चंडेश्वर गोविंद दत्त रामदत्त प्रभृति ख्यातिमान एवं प्रभृत ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के साथ अपने संबंध की कोई बात नहीं लिखी है? डॉक्टर मजुमदार स्वयं यह प्रश्न शंका के रूप में उठाते हैं, इसलिए इसके विरोध की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। वैसे यह कथन पूर्णतः निराधार है, क्योंकि विद्यापति का पूरा जीवन दुख और दारिद्र में नहीं व्यतीत हुआ और न तो वे अपने संभ्रांत वंश के लिए किसी प्रकार असम्मान के कारण ही हो सकते थे। वस्तुतः यह भारतीय कवियों की एक अद्भुत शालीनता रही है कि उन्होंने कभी अपने को प्रसारित करने का प्रयत्न नहीं किया। वे यह सत्य भी मान लिया जाए कि विद्यापति का जीवन बहुत कष्टमय था और उन्हें अपनी स्थिति के प्रति आत्मग्लान के भाव के कारण ही अपने पूर्वजों का नाम नहीं लेना उचित माना, तो भी सरस्वती के दुर्लालित पुत्र की अभूतपूर्व ख्याति में कोई फर्क नहीं आता। गणेश्वर राजा की मृत्यु के बाद विद्यापति बहुत दिनों तक निराश्रित घूमते रहे। राजकुमार कीर्ति सिंह, जो वय में विद्यापति के बराबर ही थे, अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, किंतु वे इस स्थिति में नहीं थे कि कवि को आश्रय दे पाते। विद्यापति इन्हीं दिनों इधर उधर घूमते हुए नसरत शाह और आजम शाह जैसे महापुरुष राजपुरुषों के संपर्क में आए। कवि ने अपने कई पदों में कवि भणिता के साथ इन लोगों के नाम लिए। उदाहरण के लिए, कवि शेखर भन अपरूव रूप देखी राय नसरत शाह भजली कमल मुखी, अथवा भैन असोधर नव कवि शेखर पुहवी तेश्वर कहाँ शाह हुसैन भेंग समनागर मालती सेन की जहाँ। एक पद में उन्होंने ग्यासदीन का नाम भी लिया है। वेकताओ चोर गुप्त करी कत खानी विद्यापति कवि भान महलम जुगपति चिरय जीव जीवत गयासुद्दीन सुल्तान। ग्यासुद्दीन सुल्तान अर्थात ग्यासुद्दीन आजम शाह ने अपने पिता सिकंदर शाह से विद्रोह करके 793 हिजरी में बंगाल पर अधिकार कर लिया। यदुनाथ सरकार इनका शासनकाल ईस्वी सन 1989 से 1404 तक बताते हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता में इब्राहिम शाह द्वारा तिरहुत के उद्धार के बाद दिखी है। इब्राहिम शाह 1403 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ऐसी स्थिति में विद्यापति ने आजम शाह या गयासुद्दीन की भेंट तब तक हुई होगी जब कीर्ति सिंह का अभिषेक नहीं हुआ था। नसरत शाह के विषय में हम पीछे विचार कर चुके हैं। जो हो, विद्यापति जैसे संस्कारी ब्राह्मण कवि के द्वारा कविताओं का विदेशी मुसलमान शासकों को, जिनके प्रति उनके मन में आदर का भाव न था, जैसा कि कीर्तिलता में उन्होंने स्पष्ट व्यक्त किया है। इन रचनाओं का समर्पित किया जाना इस बात का द्योतक है कि कवि की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें अपने तमाम संस्कारों को दबाकर व्यवस्था की हालत में विदेशी शासकों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी पड़ी। ईस्वी सन 1402-3 में जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह की सहायता से तिरहुत का उद्धार हुआ। कीर्ति सिंह ने जौनपुर जाकर सुल्तान से सहायता मांगी। कीर्तिलता में कवि ने जौनपुर का बड़ा विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। वहाँ के बाजारों, सड़कों, अट्टालिकाओं तथा टेढ़े मेढ़े रास्तों का इतना बारीक वर्णन शायद चाक्षुष प्रत्यक्ष की बिना संभव नहीं हो सकता। कवि ने ताजमहल के वर्णन में मुसलमानी भवन निर्माण शैली की जानकारी का परिचय भी दिया है। लगता है कि इन्होंने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, अन्यथा एक एक वस्तु का इतना सूक्ष्म चित्रण कठिन होता। उदाहरण के लिए, उन्होंने राजमहल का वर्णन करते वक्त केवल उसकी भव्यता का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि चहार दीवारी, सदरदर, वारीगाह, वारगाह, दरबारी खास आदि हिस्सों का अलग अलग और सिलसिलेवार विवरण प्रस्तुत किया है। इससे अनुमान होता है कि कवि कीर्ति सिंह और उसके भाई वीर सिंह के साथ जौनपुर गए थे। उन्हें बहुत दिनों तक सुल्तान के दर्शन की प्रतीक्षा में वहां रुकना पड़ा था। विद्यापति ने लिखा है कि सैकड़ों राजे महाराजे दर्शन की आकांक्षा से आते और किले के सामने वर्षों घूमते रहते, पर दर्शन न मिलता। कीर्ति सिंह ने सुल्तान को जाने कितनी अमूल्य वस्तुएं भेंट में दी, तब कहीं खुदाबंद सुल्तान प्रश्न हुए और वजीर की कृपा से भेंट की व्यवस्था हुई। कीर्तिलता की भाषा में न केवल फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है, बल्कि यहूदी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इससे लगता है कि विद्यापति जौनपुर अवश्य आए थे। खैर, कीर्ति सिंह का प्रयत्न सफल हुआ। असलान युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भाग खड़ा हुआ। तिरोहित को लुप्त वैभव फिर मिला। राजा के अभिषेक के समय वाद्य गीत के स्वर में विद्यापति ने भी अपने हृदय का उल्लास बिखेर दिया। कीर्ति सिंह के प्रेम प्रसंगों को लेकर बाद में कवि ने कीर्ति पताका की रचना की। ईस्वी सन 1410 से 1411 के 4 वर्ष कवि विद्यापति के जीवन के सर्वाधिक उल्लासपूर्ण थे। वर्षों की अशांति के बाद एक बार फिर मिथिला में शांति और समृद्धि की स्थापना हुई। शिव सिंह राजा थे और लक्ष्मीमा देवी रानी। विद्यापति को राजा शिव सिंह के द्वारा जो सम्मान प्राप्त हुआ, वह अभूतपूर्व था। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि विद्यापति दरबारी कवि थे पर अपनी तरह के। उन्होंने राजा की प्रशस्ति गाई पर अपने उच्चारण नहीं राज सखा समझा। कीर्ति सिंह के प्रसंग में उन्होंने अपने को अपना खेलन कवि बनाया है। शिव सिंह के वे सखा कवि थे। शिव सिंह की कई रानियां थी पर लखीमा का सौंदर्य और बुद्धि का कोई जवाब नहीं था। लखीमा पटरानी थी, वह विदुषी थी, सुंदरी थी और कवित्री भी थी। कहा जाता है कि अंतःमहल में विद्यापति के गीतों का राजा रानी के समक्ष सस्वर पाठ होता था। विद्यापति ने समवयस्क राजा और रानी को जो गीत समर्पित किए हैं वे प्रायः राधा कृष्ण के प्रेम रूपाशक्ति मान और काम कला के विविध पक्षों को स्पष्ट करने वाले। ऐसे गीतों को देखने से मालूम होता है कि कवि का जीवन बहुत सुखी और उल्लासपूर्ण था। मैंने आरंभ में यह बात स्पष्ट कर दिया है कि मध्यकालीन लेखकों पर खास तौर से दरबारी कवियों पर कामशास्त्र का बहुत घनिष्ठ प्रभाव पड़ रहा था। विद्यापति ने इस प्रकार के श्रृंगारिक पदों के अंत में कवि भणिता के साथ शिव सिंह के बारे में जो प्रशस्ति वाक्य दिए हैं वे उनकी काम कला में दग्धता को प्रकट करते हैं। वे सर्वत्र लिखते हैं कि इस गूढ़ रहस्य को लखीमा के साथ रमण करने वाला राजा शिव सिंह समझते हैं। ऐसे प्रसंगों को देखने से अनुमान किया जा सकता है कि विद्यापति शिव सिंह के न केवल मित्र बल्कि अंतरंग थे। शिव सिंह के प्रति जितने आंतरिक प्रेम का परिचय इन गीतों में ध्वनित है वह अपने तरह का है। ऐसा प्रेम शायद ही किसी दरबारी कवि को किसी राजा से प्राप्त हुआ हो। यह विद्यापति के सर्वाधिक उल्लास के दिन थे। पर समय सदा एक सा नहीं रहता। विद्यापति के आनंद की अतिशयता पर नियति की भ्रुकुटी खींच चुकी थी। राजा ने दिल्ली को कर देना बंद कर दिया। मुसलमानी फौज ने मिथिला को बर्बाद कर दिया और उसे शिकायत करके दिल्ली ले जाए गए। संभवतः वहीं उनकी मृत्यु भी हुई। प्रिय राजा के वियोग ने कवि के हृदय के उल्लासपूर्ण तारों को तोड़ दिया। प्रणय, मांसल सौंदर्य, काम मुद्राएं और प्रेम की रंगीन दुनिया टकरा कर चूर चूर हो गई। मिलन के मादक गीतों के स्थान पर विरह के उत्तम स्वर फूट पड़े। विरह के गीतों के पीछे छिपी इस करुण प्रेरणा को पहचानने का कोई आधार नहीं। लखीमा की अवस्था तो और भी अधिक शोचनीय रही होगी। मैंने प्रथम अध्याय में लखीमा ठकुराने की विरह गीत नाम से प्रसिद्ध श्लोकों में से एक उद्धृत किया है। इस श्लोक में विरह की आर्त पीड़ा की बड़ी हृदय दाविक विवृत्ति दिखाई पड़ती है। विद्यापति ने अपने प्रिय राजा की विदुषी पत्नी को इसके प्रति उनके हृदय में भी प्रेम का मधुर भाव संयोजित था सांत्वना देने का बहुत प्रयत्न किया। विरह गीतों के अंत में सर्वत्र कवि ने विरहणी को यह आश्वासन दिया है। वे बार बार कहते हैं कि कामिनी इतनी विह्वल न बन, तेरे प्रियतम अवश्य लौट कर आएंगे। वर्षा के नील मेघों से आच्छन्न धरती को देखकर भरे हृदय से वे कहते हैं कि क्या हुआ यदि वह इस पावस में नहीं आया। कार्तिक मास के आरंभ में उसका आना तो निश्चित है। विरहणी पति के वियोग में जीवित चिता में प्रवेश करने की बात किया करती थी। कवि ने इसी को लक्ष्य करके कहा है, सून सेज मोहिशालय रे, पियबुन घर मोय आजी, विनती करो सहोलिन रे, मोह देही अगिहर साजी, विद्यापति कवि गाओल रे, आनी मिलव प्रिय तोर, लखिमा देवर नागरी रे, राय शिव सिंह नहीं भोर। क्या इस पद में यह ध्वनित नहीं है कि लखिमा शिव सिंह के दारुण विरह को संभालने में असमर्थ अपने को नष्ट कर देने की बात सोच रही थी। कवि ने स्पष्ट कहा है, ओ लखिमा, ओ श्रेष्ठ नागरिका, राजा शिव सिंह तुम्हें भूले नहीं, वह शीघ्र ही लौटेंगे। एक दूसरे पद के अंत में यही बातें फिर दोहराई गई। बनई विद्यापति अरे रे कमल मुखी, गुण गाहक पिया तोर, राजा शिव सिंह रूप नारायण, सहज एक नहीं भोर। अथवा बनई विद्यापति गाउल धनी धरेज धन रे, अचीत मिलन तो ही बालम पूरत मनोरथ रे। पर मनोरथ न पूरा, मात्र शब्दों से झूठी सांत्वना देने के मिथ्योपचार को विद्यापति खूब समझते थे। प्रिय विश्लेषण दुख की पीड़ा में अपने सुहाग के प्रति आशंकित विरहणी को वे सर्वत्र सुहागिनी कामनी आदि संबोधन से सचेत करते हैं, पर सत्य उनके निकट छिपाना था। इसी कारण विरह के पदों में उनके मन की कातरता छिप न सकी। कवि ने बाद में अपने मन की झूठी बातों से भुलाना छोड़ दिया। हमें पता नहीं कि लक्ष्मा का क्या हुआ। संभवतः प्रिय की विरह पीड़ा के उत्तप्त हवा में वह मुकुलित पुष्प सदा के लिए बिखर कर धूल में मिल गया। जब सांत्वना चाहने वाला ही न रहा तो फिर आशा की मिथ्या रेखा ही क्यों खींची जाए। कबीर निराश होकर कहा, हृदय का वेदन बाण समान, आनक दुख आन नहीं जान, भने विद्यापति कवि जय राम, देव लिखल परिणत फल पाम। देव दुर्विपाक के सामने कवि ने घुटने टेक दिए, जो कुछ होना था हो गया, आनंद के क्षण सदा के लिए चले गए। ईस्वी सन 1418 में विद्यापति ने पुरातित्य के राजत्व काल में राजा बनौली में लिखनावली की रचना की। लिखनावली में चिट्ठी पत्री लिखने का तरीका बताया गया। प्रणय जिसके काव्य की प्रेरणा थी, सौंदर्य उपादान अपरूप सौंदर्य के नवल रूप जो वर्षों देखते रहने पर भी जिस कवि के नयन कभी तिरपित नहीं हुए, उसी ने चिट्ठी पत्री लिखने वालों के लिए लिखनावली का निर्माण किया। लिखनावली की रचना स्पष्ट ही पेट पालने का बहाना है। इसके आधार पर यह कहा जाए कि कवि के जीवन का यह समय आर्थिक संकट में बीत रहा था तो शायद अतिशय कल्पना प्रियता का दोष लगाया जाएगा, किंतु यह कल्पना नहीं, यही तक समाप्त नहीं होती। उसके पक्ष में एकाध प्रमाण और प्राप्त होते हैं। नेपाल राज की लाइब्रेरी में लक्ष्मण संवत 391 की लिखी हुई ब्राह्मण सर्वस्व की पांडुलिपि सुरक्षित है। इसे विद्यापति के शिष्य रूपधर ने तैयार किया था। हरायुद्ध मिश्र के इस ग्रंथ के अंत में पुष्पिका में लिखा है कि लिपिकरण के समय रूपधर विद्यापति के पास ब्राह्मण सर्वस्व पढ़ा करता था। जाहिर है कि कवि उन दिनों विद्यार्थियों का कर्मकांड और स्मृति शास्त्र का अध्यापन किया करते थे। मैं नहीं सोचता कि यह उनके जीवन की संपन्नता का द्योतक है। विद्यापति जैसे अभिजात रुचि के कवि के लिए यह सब व्यवस्था की अवस्था में भी स्वीकार करना पड़ा होगा। कष्ट की ऐसी ही परिणति अथवा शायद उनके मन में निराशावादी कातरता का उदय हुआ था। मैंने स्पष्ट कहा है कि यह कातरता कवि का स्वभाव नहीं थी। इस प्रकार की जीवंत गत्वर और रोमांटिक विचारधारा का कवि कभी भी निराशावादी नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में उन्होंने शिव, दुर्गा, कृष्ण और जानकी आदि के स्तुति पद भी लिखे। इन पदों में भक्ति की दीनता, आत्मग्लानि की अभिव्यक्ति है, इसमें शक नहीं। किंतु इससे हम चाह तो परंपरा निर्वाह भी कह सकते हैं। इस प्रकार के दीनता प्रत्येक भक्त कवि की रचना में दिखाई पड़ती है। तुलसी, सूर आदि कोई भी इस कातरता से बच न सका, क्योंकि यह कातरता भक्त के व्यक्तित्व की कमजोरी रही गुण मानी जाती थी। विद्यापति की मृत्यु के विषय में भी कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उन्होंने शिव सिंह के तिरोधान के 32वें बरस में एक स्वप्न देखा और उन्हें अपनी मृत्यु नजदीक मालूम होने लगी। इस संबंध में काल निर्णय वाले प्रसंग में हमने विचार किया है। राजा शिव सिंह का तिरोधान काल 1415 ईस्वी माना जाता है। ऐसी अवस्था में विद्यापति की मृत्यु काल 1447 ईस्वी माना जा सकता है, किंतु जैसा कि काल निर्णय वाले अध्याय में बताया गया, यह संभव नहीं मालूम होता।